सुरनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरंकाल जय गौरंकाल गौरंकाल जय गौरंकाल
जय विष्णुपाद परमहंस गुरुराज आचार्य श्रोपक्षर शिष्य मधुप्रिय चरणारविंद वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaura. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Welcome to Shri Jagannath Temple, ISKCON Karwar. How many of you would like to hear it in Hindi? आप में से कितने लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी सुनना चाहते हैं? Okay. और कन्नड़ा कितने लोग समझते हैं? And English? How many of you would like to hear it in English? सब आप सारी भाषाएं जानते हैं, सो कौन सी भाषा में करना चाहिए, कंफ्यूज हो गए. कन्नड़ हमें आती नहीं है, सो कन्नड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन. इंग्लिश और हिंदी में वोटिंग कर सकते हैं, है ना? डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो आपको दोनों भाषा समझ में आती हैं. यू अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेज. विच वन विल यू प्रिफर? आपको कौन सी भाषा में सुनना अच्छा लगेगा, हिंदी या इंग्लिश? कितने लोग, हम जानते हैं कि आपको दोनों भाषा आती हैं, यू अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेज, बट कितने लोग केवल हिंदी सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए. ओके. और कितने लोग केवल इंग्लिश सुनना चाहते हैं? अच्छा, बाकी लोग कन्नड़ा. ओके, विल मिक्स इट, राइट? बिकॉज 50-50 है आप लोग, तो विल हैव इट इन इंग्लिश एंड देन साथ साथ में हिंदी. इट्स कॉल्ड हिंग्लिश, HINGLISH, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, ठीक है? सो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इफ यू वॉन्ट टू बी अ विनर, सो वॉट इज द सीक्रेट? ऐसा क्या है जो हमें एक विजेता बनाता है? सो इससे पहले कि हम लोग कुछ कहना प्रारंभ करें, हम लोग प्रणाम करना चाहेंगे AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने सारे जगत में, हु टॉट द वर्ल्ड हाउ टू बी द बेस्ट ऑफ विनर्स, एंड ही मेड लॉट ऑफ विनर्स. तो उन्होंने सिखलाया कि कैसे इस जगत में जो जीवन का खेल है उसको जीतना चाहिए. हाउ टू विन द गेम ऑफ लाइफ was taught by Srila Prabhupada. So we pay our humble obeisances, हमारे नम्र प्रणाम हम उनको अर्पण करते हैं. और आज का जो विषय है, विनर, हाउ टू बी अ विनर. एवरी वन लव्स टू बी अ विनर. सबको अच्छा लगता है ना? कोई ऐसे हैं यहाँ पे जिनको जीतना बिल्कुल पसंद नहीं, हारना अच्छा लगता है? एनी वन लाइक्स टू लूज? They don't want to be the winner. Everyone wants. And winning brings happiness. जब हम जीतते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और मन में अच्छा लगता है, लोग आदर देते हैं, people give respect, that we like it. So winning is always good. In fact, in this world, there are three kinds of people. तीन तरह के लोग होते हैं. पहले जो विजेता हैं, दोज हु आर विनर्स, एंड अदर्स, सेकंड जो हार चुके हैं, लूजर्स. लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है. तो जब हम लोग जीवन के दौड़ में होते हैं, व्हेन वी आर इन द रेस ऑफ लाइफ वेयर वी हैव टू विन द गेम ऑफ लाइफ, जहां हमें जीवन का जो खेल है उसको जीतना होता है, तो कुछ लोग विजेता होते हैं जो जीत जाते हैं, विनर्स, एंड सम आर लूजर्स, कुछ हार जाते हैं. लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जिसे पोटेंशियल विनर्स कहते हैं. पोटेंशियल विनर्स अर्थात जो जीत सकते हैं, जो विजेता बन सकते हैं, बने नहीं हैं लेकिन बन सकते हैं. और अगर उनमें कुछ गुण आ जाएं, अगर वो कुछ चीजों को स्वीकार कर लें, इफ दे एक्सेप्ट certain things in their life, then they can become winners. So today we are going to discuss about those things. Today we are going to discuss about potential winners. ऐसे लोगों का हम लोग आज वर्णन करेंगे जो जीत सकते हैं, अभी विजेता बने नहीं हैं, जीते नहीं हैं और ना ही हारे हैं, लेकिन जीत सकते हैं, उनके अंदर शक्ति है, they have the potential to win, but they are distracted by the failures. वो जीत सकते हैं, शक्ति है, लेकिन हार के कारण उनका जो मन है वो भ्रमित हो गया है. वो सोचते हैं हम कभी जीत ही नहीं सकते. तो इसीलिए ऐसी कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम शायद नहीं जीत सकते या हार जाने से हम थोड़ा घबरा गए हैं, तो हाउ वी कैन विन द गेम. सो वी हैव टू बी द विनर्स. ओके, विच एवर गेम वी प्ले, वेदर वी प्ले द गेम ऑफ फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और द गेम ऑफ लाइफ, वी शुड कम आउट एज विनर्स. हम लोग कोई भी खेल क्यों ना खेलें, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, लेकिन हमें विजेता होना चाहिए. इसी तरह जब हम जीवन का खेल खेलते हैं, और जीवन का खेल क्या है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि, ये तो हमें पता है. वी नो व्हाट इज क्रिकेट, व्हाट इज फुटबॉल. हाउ मेनी ऑफ यू नो द गेम ऑफ लाइफ. आप में से कितने लोग जानते हैं कि जीवन का खेल क्या है? हाथ ऊपर कीजिए. कोई नहीं. जीवन का खेल ये हमसे संबंधित है. द गेम ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड टू अस. ऑल अदर थिंग्स आर एक्सटर्नल टू अस, बट गेम ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू अस. जो जीवन का खेल है वो हमसे संबंधित है, हमारा जीवन से, हम कौन हैं, इस विषय को लेकर. और जब उसको हम जान लेते हैं और फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं, तब जीवन का खेल जीत सकते हैं. वी कैन विन द लाइफ वंस वी नो हु वी आर एंड व्हाट इज अवर ड्यूटी. सो इट बिलोंग्स टू द गेम ऑफ लाइफ, रिलेट्स टू अस, हमसे जुड़ा है. तो इस रेस को जीतने का प्रयास करेंगे. तो जब हम लोग जीतने की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ विनिंग, तो कैसे उसको बोला जाता है, हाउ डज वन डिफाइन. अर्थात जीवन में सफल होना, जीत जाना, कैसे हम इसको समझेंगे. आप में से कोई बता सकते हैं? एनी वन ऑफ यू कैन टेल दैट व्हाट डू यू थिंक विनिंग इन लाइफ मींस. मे बी फॉर सम पीपल इट कैन बी मनी. I'll give you example. थोड़े लोग कह सकते हैं कि धन इकट्ठा करना, बहुत सारा धन कमाना, ये जीवन की सफलता है. This is the success of life. That is one thing. Any other thing would you like to say? आप में से कोई बोलना चाहेंगे? कोई और चीज, जीवन की सफलता क्या है? आप लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं कि नहीं? How many of you want to be successful in life? Please raise your hands. How many of you want to be successful? Okay, so what do you think success is? You said you want to be successful. आपने कहा कि आप सफल होना चाहते हैं. तो सफलता क्या है? जैसे कोई कह सकता है बहुत सारा मैं पैसा कमाना चाहता हूं. आपका जीवन में उद्देश्य क्या है? What is your goal in your life? कौन बताएंगे आप में से? कोई भी students? कोई भी हो सकता है. किसी का पैसा हो सकता है, किसी को प्रधानमंत्री बनना हो सकता है. Anything else you want to say? कौन बोलेंगे आप में से? Otherwise I'll have to ask someone. Okay, then I will ask if you don't answer. Maybe you can say. Yes. Can you be louder? संतुष्टि. ठीक है, थोड़ा माइक एक कॉर्डलेस रेडी रखें. संतुष्टि. इफ यू आर सैटिस्फाइड, अगर हमें जीवन में संतुष्टि मिल गई तो फिर हम सफल हैं. बहुत अच्छा. और कोई? एनीवन एल्स? आप में से कोई कहना चाहेंगे? अब हाथ ऊपर कीजिए, माइक आ जाएगा. पीछे दीजिए, वहां पे माइक ऑन करके दीजिए. बहुत बड़ा नाम कमाना, यस। तो एक है संतुष्टि, ये हमारे जीवन की सफलता है, हम जीत जाएंगे। दूसरा है बहुत नाम कमाना, बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाना, ठीक है। और
सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ,
सक्सेसफुल व्हाट इन व्हाट वे सक्सेसफुल, दैट्स गुड, बट इन व्हाट वे, किस तरह से सक्सेसफुल। मे बी वो वाला दरवाजे से नहीं यहां से आ सकते हैं, तो बैठने में तकलीफ नहीं होगी अब जो आएंगे। यस, व्हाट वे सक्सेसफुल, यू सेड वाज करेक्ट, बट इन व्हाट वे,
सोसाइटी,
इन सोसाइटी टू हैव अ नेम, गुड नेम, पीपल शुड टेल यू दैट यू आर अ वेरी फेमस पर्सन, राइट, ओके, दैट सक्सेस। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौनिताय की जय। अच्छा, और कोई
लीडरशिप,
लीडरशिप टू बिकम अ लीडर, राइट, नरेंद्र मोदी और आई डोंट नो फेमस लीडर,
इन व्हिच एवर फील्ड वी आर डूइंग,
व्हिच एवर फील्ड, ओके, व्हिच एवर फील्ड यू आर इन, टू बिकम द लीडर, टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट फील्ड, राइट। लाइक सपोज यू आर एन इंजीनियर, सो बिकम द टॉप मोस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड, राइट, ओके, वेरी गुड। और कोई, बहुत अच्छा, एक आध और कोई बोलना चाहेंगे, पीछे से किसी ने, हाँ वहां पर हाथ उठाया, दीजिए जरा पीछे माइक, एक यंग यहीं पर रही है, एक व्यक्ति माइक देने के लिए। हाँ
हेलो सर, इट इज टू हैव इनफ प्रॉस्पेरिटी टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ,
ओके,
एंड द सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू फुलफिल अवर स्पिरिचुअल नीड्स सो दैट वी कैन स्टे डिटैच्ड एंड हैप्पी,
वेरी गुड। सो द गोल ऑफ लाइफ और विनिंग इन लाइफ कैन बी that if we have enough to meet our needs and at the same time if we are also taking care of our spiritual needs, very good. Yes, behind, someone wants to say,
to get each and every single thing which I want,
to get like, each and every thing which you want,
yeah, everything which include spirituality or materialistic things, each and every single thing which I want.
Can you name some of the things which you want?
Yeah, materialistic things which include money, famous, money, fame,
okay,
all luxury,
yeah,
and spirituality which refers to happiness, peace, joy.
Very good. So money, position and material things, so both, and in spirituality, peace, happiness, etc. Very nice. Anyone else would like to add something? कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? जीवन में सफलता क्या है? Any of you can raise your hands. Mic will come to you. Yes.
Potentiality.
Potentiality in what? You should have potentiality, but in what? Potential. Your potential to be utilized in what? In your field of activity which you are doing, right? Okay, very nice. So yes, you see, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं. Many people are saying different things, right? For one person, money may be the success. If I have enough money, I am a winner. For someone, the position. For someone, the satisfaction. For someone, the happiness. So similarly, everyone has a different view of success. For some, wealth. Some may have good family. ऐसा हो सकता है कि बस अच्छा परिवार हो, सुखी परिवार हो, क्योंकि आजकल सुखी परिवार होता नहीं है, इसीलिए सुखी परिवार हो बस, उसमें संतुष्टि है. या फिर अच्छी हेल्थ, जिसकी हेल्थ नहीं है अच्छी, ये सोचता है कि बस मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, जीवन सफल हो जाएगा. इफ आई हैव गुड हेल्थ, माई लाइफ विल बी सक्सेसफुल. Fame and recognition, as you said, sometimes to get a degree. When you are studying, जब आप पढ़ रहे होते तो आपको लगता है बस ये degree मिल जाए उसके बाद जीवन सफल, कमाई भी हो जाएगी, सब आ जाएगा, लेकिन degree नहीं होगी तो कैसे आएगा, इसीलिए बहुत प्रयास करते हैं. And also peace of mind, as somebody said, satisfaction और संतुष्टि. तो ये सारी चीजें हमें चाहिए. इसका अर्थ ये है कि जो जीतना है उसकी कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती. कैन नॉट बी डिफाइंड इन जस्ट वन वे विनिंग. इट इज सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन द पर्सन. सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ विनिंग. अभी हम आपको कुछ थोड़े कोट्स दिखाते हैं
कि लोग क्या कह जीतने के विषय में. अभी आप लोगों ने कुछ कहा, अब कुछ प्रसिद्ध लोग क्या कहते हैं. एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेंगे, वो कहते हैं, थिंकिंग लाइक अ विनर मीन्स नॉट ऑलवेज हैविंग टू डिफीट समवन एल्स. इट मीन्स बीइंग एबल टू ग्रो फ्रॉम अ सिचुएशन इन विच यू फेल टू मीट योर गोल. बहुत अच्छी बात उन्होंने कही. वो कहते हैं कि एक विजेता की तरह सोचने का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा किसी को पराजित करने की बात करें. वी आर गोइंग टू डिफीट समवन. इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके तो हम वहां से कैसे आगे बढ़े. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अभी तक हमने चर्चा की जीतना क्या है, विनिंग क्या है. अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो जीत नहीं सके. तो कैसे, जैसे हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे, मेनी ऑफ अस आर लाइक दैट, हु आर नॉट एबल टू मेक इट ऑन द टॉप. सो व्हाट क्वालिटीज वी शुड हैव दैट कैन मेक अस सो स्ट्रांग दैट वी रीच द टॉप. हमें इतना मजबूत बना दे कि हम ऊपर तक जा सकें. और एक कोट आपको बताते हैं, ये थॉमस एडिसन है. आप में से सब लोगों ने नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का. क्या बनाया था इन्होंने, हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था. और आप जानते हैं कि जब ये बना रहे थे तो कितनी बार फेल हुए थे, एनीवन नोज, हाँ, हजार और 8000. ऐसे बताते हैं कि कई हजार बार वो फेल होते रहे. वो बनाते रहे, नहीं सक्सेस हुआ, फिर बनाते रहे. लेकिन वो हारे नहीं. उन्होंने ये नहीं कहा ये होगा नहीं. उन्होंने कहा कि मैंने 2000 वे सीख लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जाता. सो आई एम नॉट डिस्करेज बिकॉज एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट डिस्कार्डेड इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड. वो कहते हैं कि मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं होता है, मैं निराश नहीं होता हूं ये सोच के कि मैं हार गया. लेकिन मैं इसको सोचता हूं कि हाँ, और एक कदम आगे बढ़ गया. क्यों? क्योंकि मुझे और एक तरीका पता चल गया जिससे बल्ब नहीं बनाया जाता है ना. सो ही सेड आई डोंट गेट डिस्करेज्ड. मोहम्मद गजनी, आपने नाम सुना है, ये बड़ा थोड़ा सा पुराने समय में हम चले गए. मोहम्मद गजनी, ये भारत पर इन्होंने 18 बार आक्रमण किया था. मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 18 टाइम्स. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 18 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया. और 18 बार आक्रमण करके बाद में जीते, लेकिन हर बार नहीं जीते. पहली बार किया हार गए, दूसरी बार किया हार गए. और जब दूसरी बार वो हारे तो एक कुएं में गिर गए थे. वो भागते भागते उनको भागना पड़ा सेना से अपने इसको बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, तो कुएं में गिर गए. और वो छुप रहे थे कुएं में क्योंकि ऊपर सब शत्रु के सैनिक थे. ऑल द एनिमी सोल्जर्स वेर देयर एंड देवर ट्राइंग टू किल हिम. सो देवर लुकिंग फॉर हिम, देवर सर्चिंग. वो ढूंढ रहे थे तो ये छुप गए कुएं में, मोहम्मद गजनी. और कुएं में उन्होंने देखा कि एक स्पाइडर था. स्पाइडर जानते हैं आप लोग, क्या कहते हैं स्पाइडर को यहाँ की भाषा में, मकड़ी तो बोल, हाँ, जेड़ा. ओके, जेड़ा, समझते हैं आप लोग. तो मकड़ी वो ऊपर चढ़ रही थी, बार बार गिरती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिरती थी, फिर चढ़ती थी, फिर. ये अंदर छुपे हुए बैठे थे मोहम्मद गजनी कुएं के अंदर. ये दूसरी बार जब हारे थे और वो देख रहे थे कि वो बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है. लेकिन वो चढ़ती रही, चढ़ती रही, चढ़ती रही, चढ़ती रही, अंत में चढ़ गई पूरा. तो मोहम्मद गजनी ने उससे सीखा कि हाँ, जब तक सफलता नहीं मिले प्रयास करते रहना चाहिए. ट्राई टिल यू सक्सीड. और इसीलिए उन्होंने 18 बार भारत पर आक्रमण किया. आप सोचिए, कोई एक बार करे, दो बार करे, तीन बार करे, चार बार करे, चला जाएगा कि नहीं होना है. 18 बार, और 18वीं बार जीते वो. उन्होंने फिर भारत को बहुत लूटा. तो मोहम्मद गजनी वैसे तो ये अच्छे उदाहरण नहीं है क्योंकि भारत को लूटा है, लेकिन हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. तो इन्होंने इतना समय, वैसे जब भारत की बात आती है तो और एक उदाहरण मन में आता है. आप में से कितनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में सुना है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द फ्रीडम फाइटिंग फॉर इंडिया, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग के विषय में कितने लोगों ने सुना है, हाथ ऊपर कीजिए, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? ओके, बहुत कम लोग हैं। आप सबने नहीं सुना? सब सुना है। जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, कोई दे डिंट हैव एनी वेपन्स, कोई हथियार नहीं थे, ऐसे ही स्त्रियां थीं, बच्चे थे, पुरुष थे, वो सब आपस में मिल रहे थे, और अचानक अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अंग्रेजों के एक जनरल थे, जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग को चारों तरफ से बंद कर दिया, उसका एक ही दरवाजा था, उसको बंद कर दिया कि कोई बाहर नहीं जा पाए, और उसके बाद अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाओ, मार डालो सबको। और उन्होंने आंख बंद करके गोलियां चलाई, जिसमें बच्चे मारे गए, स्त्रियां मारी गईं, पुरुष मारे गए, बहुत सारे लोग ऐसे, वहां पे कुआं था, उसमें बचने के लिए कूद गए और उधर ही मर गए बहुत सारे लोग, तो बहुत लोग मारे गए। सो दिस जनरल डायर, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग इनोसेंट पीपल, लेडीज, चिल्ड्रन, मैन हु वर नॉट अपोजिंग, जस्ट ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स जस्ट किल देम, मार डालो। तो जब ऐसा हुआ तो एक व्यक्ति को बहुत क्रोध आया, वो थे उधम सिंह। उधम सिंह ने ये निर्णय लिया, ये प्रण लिया कि मैं जनरल डायर को मारूंगा, क्योंकि इन्होंने जलियांवाला बाग में जाकर मासूम लोगों की हत्या की है, तो मैं उनको मारूंगा। ये उधम सिंह कौन थे, कोई जानते हैं? ये भगत सिंह के भाई हैं। भगत सिंह का नाम सुना है सबने? राइट, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड भगत सिंह, व्हाट ही डिड, व्हाट डिड ही डू, हु वाज भगत सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ, फ्रीडम फाइटर, एंड व्हाट डिड ही डू, ही थ्रू अ बॉम्ब राइट इन द असेंबली, knowing that he will be caught, जानते थे कि पकड़े जाएंगे, और फिर बड़े प्रसन्नता से उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था, भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए। अब सोचिए कि क्या उनके अंदर जुनून होगा, क्या भावना होगी, क्योंकि बहुत दर्द होता है मरने के लिए, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ऐसे लोग, तो उनके भाई थे उधम सिंह, ही वॉज ब्रदर ऑफ भगत सिंह। तो उन्होंने निर्णय लिया कि क्योंकि ये जनरल डायर ने ऐसा किया है, मैं इनको मारूंगा, लेकिन कैसे मारें, बिकॉज जनरल डायर आफ्टर किलिंग इन जलियांवाला बाग ही वेंट बैक टू लंदन, वो वापस चले गए लंदन, और वहां पर उनका बहुत मान सम्मान हुआ, बहुत अच्छा काम किया आपने भारत में, इतने सारे मासूम लोगों को मारा। लेकिन ये उधम सिंह जो थे, इन्होंने 20 साल तक, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, 20 साल तक तैयारी की, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। उस समय भारत में, भारत से इंग्लैंड जाना कोई आसान नहीं था काम, उसके लिए बहुत तैयारी लगती थी, सरकार की अनुमति लेना इत्यादि। तो उन्होंने 20 साल तक तैयारी की केवल एक उद्देश्य के लिए, ओनली वन पर्पस, he wanted to kill General Dyer. So he earned money, उन्होंने पैसा कमाया, ये पैसा इकट्ठा किया, सरकार से अनुमति लेना बहुत मुश्किल था उस समय। आज तो लंदन कोई भी टिकट खरीद के चले जाते हैं, आपको कल जाना है आप कल जा सकते हो, फिर भी वीजा लगता है, लेकिन सरल है, उस समय बहुत मुश्किल था। So for 20 years, 20 वर्ष तक ये उधम सिंह तैयारी कर रहे थे, और 20 वर्ष के बाद ये लंदन गए, और वहां पर असेंबली में, उधर असेंबली चल रही थी, उन्होंने पूरी 20 साल तक तैयारी की थी कि मैं कैसे मारूंगा, और 20 साल बाद लंदन जाकर उनकी असेंबली में जाकर जनरल डायर को गोली मार दी उन्होंने, उधम सिंह ने। सोचिए 20 साल तक तैयारी जीतने की। हाँ, उनको मालूम था कि वो पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि हो सकता है मैं छूट जाऊं भाग जाऊं, नहीं वो जानते थे सबके सामने गोली मारूंगा पकड़े जाएंगे और ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन फिर भी तो भले वो पकड़े गए बट ही वॉज अ विनर। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि ऐसे बाहर से लगता है कि हार गया पकड़ा गया लेकिन एक्चुअली वो विनर होता है। तो मोहम्मद गजनी बताते हैं कि हमें, उन्होंने सीखा मोहम्मद गजनी ने यहां पर कि हमें हमें प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो। और भी बहुत सारे कथाएं हैं कहानियां हैं, अभी बहुत ज्यादा तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कहानी है, एक कार्टूनिस्ट है आप लोग जानते हैं, बड़े फेमस कार्टूनिस्ट हैं, उनकी कथा है। लेकिन उससे पहले एक वर्णन करेंगे, एक बिजनेसमैन, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, 21 वर्ष की आयु में कंप्लीट फेल हो गया वो बिजनेस। फिर उन्होंने प्रयास किया कि इलेक्शन लड़ लें, तो 22 साल की उम्र में उन्होंने इलेक्शन लड़ा हार गए। 24 साल की उम्र में फिर बिजनेस किया फेल हो गया। फिर उन्होंने, उनकी जो प्रेमिका थी उसकी मृत्यु हो गई 26 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन मतलब मानसिक कष्ट हो गया, वो संभाल नहीं पाए ये सब चीजें, बिजनेस फेल हो रहा है, हार रहे हैं, जिसको प्रेम करते थे वो मर गई, ये सब उनको तकलीफ हो गई। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा तो फिर हार गई 34 वर्ष की उम्र में। फिर उन्होंने 45 वर्ष की उम्र में फिर से इलेक्शन लड़ा, फिर से हार गए। फिर उन्होंने 47 वर्ष की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो भी वो हार गए। आप सोचिए कब से चल रहा है, 21 साल की उम्र से फेल होते जा रहे हैं। फिर अगेन उन्होंने 49 ईयर्स के हो गए अभी 49 वर्ष, फिर एक इलेक्शन लड़ा उसमें भी हार गए, लेकिन उसके बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। और कौन थे वो? अब्राहम लिंकन। तो क्या हम लोग उनको कह सकते हैं कि फेलियर आदमी? इतना फेमस आदमी है अब्राहम लिंकन, उनके कोट्स दिए जाते हैं जो उन्होंने बोला वो लिखे जाते हैं कि हाँ फेमस कोट्स ऑफ अब्राहम लिंकन। लेकिन उनकी क्या स्थिति थी देखिए, कहां कहां 21 वर्ष 24 वर्ष 27 वर्ष सब में फेल हो रहे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। और ऐसे जैसे हम कार्टूनिस्ट के बारे में बता रहे थे, वो अपने कार्टून लेकर गए तो जहां लोगों ने देखा बोला ये बकवास है ये सब तुम्हारा कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो बनाते रहे और आगे चलकर बड़े फेमस कार्टूनिस्ट बने, आज उनको सारी दुनिया जानती है, करोड़ों रुपया कमाया उन्होंने वॉल्ट डिज्नी। शास्त्रों में हम लोग देखते हैं पांडवों का वर्णन, पांडवों के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद द पांडवस। पांडव का जन्म हुआ जंगल में, राजकुमार है जंगल में जन्म हुआ, जब आए राज्य में तो लोगों ने स्वीकार करने से मना कर दिया, एवरीवन सेड हु नोज यू नो हूज सन यू आर, वी डू नॉट नो वेदर यू आर पांडु सन और यू आर एनीवन एल्सेस, वी वॉन्ट एक्सेप्ट यू, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद थोड़े बड़े होने लगे तो उनके ही भाई दुर्योधन इत्यादि एक्सेट्रा दे वॉन्टेड टू किल देम, वो उन्हें मारना चाहते थे। आप जानते हैं ना भीम को जहर दिया गया, उसका उल्टा ही असर हो गया, भीम और शक्तिशाली हो गए। भीम को मारने का बहुत प्रयास करता था दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन जानता था एक से डरता था भीम, क्योंकि भीम का फेवरेट पास टाइम क्या था, जो खेलने जाते था तो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, कौरव 100 थे, उनमें से 8-10 को ऐसे पकड़कर पानी के अंदर डाल देता था और वो लोग तड़पते चिल्लाते चिल्लाते फिर बाहर निकालता फिर डाल देता था आराम से। तो दुर्योधन कहते थे भीम को जरूर मारना है, तो एक दिन खीर में मिलाकर जहर दे दिया और पानी में फेंक दिया उसको बांधकर। लेकिन भीम और शक्तिशाली होकर आया, ये महाभारत की कथाएं हैं। तो थोड़े बड़े हुए तो मारने का प्रयास, और बड़े हुए तो जलाने का प्रयास किया गया, उनको एक महल दे दिया गया, जाओ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा महल बनाया है, खुशी खुशी गए रात को आग लगा दी उसमें ताकि मर जाए, जलाने का प्रयास किया गया। फिर वापस आए तो उनका राज्य उनको नहीं मिला, फिर राज्य दिया तो फिर जुए में उनका राज्य छीन लिया, और इतना ही नहीं उनकी पत्नी को सबके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। आप सोचिए पांचों शक्तिशाली थे, दे वर नॉट कावर्ड्स, दे वर वेरी पावरफुल पीपल, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ऑल वेरी पावरफुल, बट उनके सामने उनकी ही पत्नी के वस्त्र निकाले गए, वो कुछ नहीं कर पाए। कितनी और अपमान कोई सहन कर सकता है आप सोचिए। और उसके बाद भी उनको वनवास भेज दिया गया, और उतना ही नहीं, एक वर्ष का ज्ञातवास, और अगर उस वर्ष में ढूंढ लिया तो फिर से 12 वर्ष। और वो एक वर्ष में दुर्योधन के सारे जासूस सारे पृथ्वी पर ढूंढ रहे थे, कहां इनको ढूंढ के निकालो ताकि फिर से 12 वर्ष चले जाए। What a nice plan Duryodhan had. You see, go to the forest for 12 years. 12 साल जाओ, एक साल छुप कर रहना है, अगर ढूंढ लिया तो फिर 12 साल जाना होगा। तो मतलब दुर्योधन सोच रहा था जीवन भर हम यही करेंगे, 12 साल शांति में बैठेंगे, 1 year we will look for them. एक साल ढूंढेंगे, जब मिल जाएंगे तो फिर से 12 साल भेज देंगे, फिर अगले साल एक साल ढूंढेंगे। But somehow that also they came out. And after that, जब वो सब हो गया तो उनकी उनका राज्य देने के लिए मना कर दिया। फिर युद्ध हो रहा है, और युद्ध में कौन खड़े हैं उनके अगेंस्ट, उनके ही गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने सिखाया कैसे चलाना चाहिए, भीष्म, कृपाचार्य। सो यू सी ऑल दीज थिंग्स पांडवर्स हैड टू फेस, बट अल्टीमेटली दे वर सक्सेसफुल। दे हैड टू फेस सो मेनी थिंग्स, कितना फेलियर हुआ उनकी लाइफ में हर जगह, लेकिन अंत में उनकी जीत हुई। इसीलिए किसी ने कहा है कि सक्सेस इज 99% फेलियर, सफलता 99% हम असफल होते हैं तब सफलता आती है। ऐसे बहुत सी हैं। एक और आपको उदाहरण बताते हैं, इनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। इनके बारे में बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। इनके घर में 22 बच्चे थे, ये 22 इनके परिवार में 22 संतान है, 22, एंड शी वॉज द 20th चाइल्ड, 20वीं संतान थी अपने माँ बाप की। यू कैन इमेजिन कैसे किस स्थान में रहते होंगे। और जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत जल्दी जन्म हो गया था, तो ठीक नहीं थी, 4 साल की थी तब। उस समय इनको कोई बीमारी हो गई जिससे जो उनका पाँव था वो पैरालिसिस हो गया, उनका पाँव काम नहीं कर रहा था, और उनको एक मेटल का लेग लगाना पड़ा। 9 वर्ष की थी, उन्होंने वो मेटल लेग निकाल दिया, नहीं मैं चलना चाहती हूँ, प्रयास किया, चलने लगी। 13 वर्ष की जब हुई तो उन्होंने भागना शुरू किया, और बहुत सारी रेस में भाग लेती थी लेकिन हर रेस हार जाती थी। कैसे होगा, पांव ठीक नहीं है, रेस में भाग लेंगे, लोग मजाक उड़ाते थे। पीपल यूज टू से व्हाट अ फूलिश पर्सन, Why you want to do it? But she was determined. No problem. I'll do it. And she went on एक रेस, दूसरा रेस, तीसरा रेस, हारती थी लेकिन छोड़ा नहीं. And then eventually this little girl, जिसको लोगों ने कहा था चल भी नहीं पाएगी, भागने की तो बात दूर है, उसमें 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते उसने। This is her story. तो देखिए कि कितना महत्व है कि जब हम फेलियर्स हमारे सामने आते हैं तो हमें कैसे उनको सामना करना है। When we have to face failures, how we should fail? We should understand that we become tough when the failures comes. That is why there is a saying, the finest steel gets sent through the hottest furnace. Furnace मतलब जिसमें स्टील बनता है, अगर बहुत गर्म से निकलता है तो बहुत अच्छा स्टील बनता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे जीवन में फेलियर्स आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो वो हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अ विनर इज नॉट वन हु नेवर फेल्स बट वन हु नेवर क्विट्स इन लाइफ। विजेता वो नहीं है जो जीवन में कभी हारता ही नहीं है, इज नॉट अ विनर, क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा, शायद ही कोई ऐसा। लेकिन विनर वो है जो कभी छोड़ता नहीं है जीवन में हार के कारण, जस्ट क्विट्स, छोड़ दो, होने वाला नहीं है, नहीं, वो हार मानता नहीं है, वो विनर है। ओके, सो इस बात को समझ लीजिए, अ विनर इज नॉट द वन हु never fails. ऐसा नहीं है कि वो कभी हारता नहीं है, but the one who never quits, वो कभी छोड़ता नहीं है जीवन में, हार नहीं मानता कुछ भी हो जाए. ऐसे कई हजारों उदाहरण हैं शास्त्रों में, इतिहास में. In the history we have hundreds of examples like that. In the scriptures we have so many examples. That be determined, go on. That is the quality of a winner. एक विजेता के गुण क्या है? वो हार मानता नहीं है, हार सकता है, हार सकता है लेकिन हार मानता नहीं, फिर और तैयारी करता, फिर और तैयारी करता. तो इस तरह से हमें जब हार सामने हो तो उसको बड़ी अच्छी तरह से सामना करना चाहिए. We should face the failure in a proper way. So I'll tell you few things how to face. कभी कभी जब जीवन में असफलता आए तो क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर विनर बनना है तो जैसे हमने कहा असफल तो होंगे लेकिन हार नहीं माननी है. तो क्या करना चाहिए? पहली चीज, हमें स्वीकार करना चाहिए. Admit it quickly. Yes, I lost. Now what? Prepare for another thing. कभी कभी हम लोग मानते ही नहीं है. We don't accept our defeat. How is it possible? How is it that I, you know, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपने अच्छी पढ़ाई की, कम मार्क्स आ गए, आप बस कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसी पे आप सारा जीवन निकाल दो, क्या लाभ है? Admit it. ठीक है, I've lost. Maybe whatever is the factor. But let's try for another. So not dwell on it. उसपे बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है, लेकिन learn from it. हमें उससे सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. अगर किसी को कम marks आए हैं तो उसको सोचना चाहिए क्या हुआ था, कहाँ मैं गलत गया, where did I make a mistake. मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, ध्यान नहीं दिया, nervous हो गया. आपको ये सारी चीज़ें भी बहुत होती हैं. हम लोग बहुत जल्दी ये जो सेशंस हो रहे हैं ये हम हर हफ्ते करेंगे, एंड उनमें एक हम सेशन बहुत जल्दी लेने वाले हैं कि आप कंसंट्रेशन और मेमोरी आपकी कैसे बढ़ा सकते हो. स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, मेमोरी नहीं होती है. वी स्टडी स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी एंड व्हेन वी रीच द एग्जाम हॉल वी फॉरगेट एवरीथिंग, ब्लैंक. ऐसा होता है ना, कभी कभी भूल जाते हैं कंप्लीटली. तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि कैसे हम याद. तो एक कुछ दिनों बाद आपके लिए हम ये सेमिनार करेंगे जिसमें आपकी मेमोरी पावर कैसे आप बढ़ा सकते हो इसके विषय में चर्चा करेंगे. सो लर्न फ्रॉम इट एंड नेवर रिपीट इट. जो गलतियां आपने की हैं उसको फिर से दोहराना नहीं है, और ना ही हमें दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना चाहिए. वी शुड नॉट जस्ट पुट ऑन ब्लेम ऑन अदर्स. एक्सेप्ट इट, इट्स माई मिस्टेक, मेरी गलती है. अरे उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, वो टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, यहां ये हो गया. नहीं, इट्स माय मिस्टेक, एक्सेप्ट इट, गो अहेड. अब क्या करना है, दूसरा आगे क्या अच्छे से रहना है. इन विषयों में आपके अगर कोई प्रश्न हो आप लिख कर रख लीजिए या सोच लीजिए. अभी थोड़े समय बाद प्रश्नोत्तर प्रारंभ होंगे, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं. इन दिस रिगार्ड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कीप इन योर माइंड एंड there will be a question answer session, then you can ask any question regarding this which is there in your mind. So let's see the qualities of a winner. Ek vijeta ke kya gun hone chahiye? Determination. He should be determined, you know, dhridta honi chahiye vijeta ke hriday. Determined means karna hi hai. जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देना चाहते हैं. 1960 में एक मूवी आई थी, मैन ऑफ ऑनर, इंग्लिश मूवी थी ये. वैसे एक रियल लाइफ स्टोरी पर बनी थी, बहुत अच्छी मूवी थी. इन द सेंस इसमें नेवी के बारे में बताया गया था, यूएस नेवी कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है वगैरह. तो उसमें एक व्यक्ति था, तो वहां पर बहुत सारा वो व्हाइट और ब्लैक के बीच में बहुत होता था उस समय, कि अगर कोई ब्लैक है, जैसे आजकल तो अमेरिका का प्रेसिडेंट ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन उस समय नहीं था. तो जो व्हाइट लोग थे वो लोग ब्लैक लोगों को बहुत नीचा दिखाया करते थे. तो नेवी में भी यही होता था, तो एक ऑफिसर था जो ब्लैक था, बहुत अच्छा था, एंड ही वाज अ डाइवर, इसका नाम था कार्ल ब्रुशे। तो कार्ल जो था ये मरीन डाइवर था, डाइवर समझते हो आप लोग, पानी में जो बहुत नीचे जाते हैं ना, सूट वगैरह पहनकर, डाइविंग सूट पहनकर वो नीचे जाते हैं, को मरीन डाइवर्स कहते हैं। तो अच्छी पोस्ट पे था, मरीन डाइवर भी था। एक एक्सीडेंट में उसका एक पांव चला गया। अब ऑब्वियस है, अगर पांव कट गया तो वो स्वाभाविक है कि वो डाइविंग नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको नेवी से निकाल दिया गया, निकालना था। लेकिन जो कार्ल ब्रुशेर था, ही वॉन्टेड सो बैडली टू बी इन नेवी एंड टू डू द सेम एक्टिविटी, वो वही करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। नेवी के जो उनके उस समय के ऑफिसर थे, उनको कहा कि आप मुझे ट्रेन कीजिए। तो एक गुरु स्वीकार किया और उनके अंडर में बहुत ट्रेनिंग लिया। उन्होंने एक नकली पांव लगाया और ट्रेनिंग लेते रहे, चलने की चलने की चलने। लेकिन इनके जो ऑफिसर था एक, जिसने इनको निकाला था, वो नहीं चाहता था कि वापस आए। ही डिडंट वांट हिम टू कम बैक। सो फाइनली ही अप्लाइड अगेन एंड ही सेड आई वांट टू बी रीइंस्टेटेड, मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे वापस लेना चाहिए, मैं सही हूं, अभी मैं कार्य कर सकता हूं। सो देन दे अपॉइंटेड फ्यू पीपल, कोर्ट बैठी कोर्ट में, एंड दे सेड हूएवर व्हाटएवर द जज गिव्स द डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। सो कोर्ट में जाना है, जज आपको जो डिसीजन देगा वही आपका डिसीजन होगा। तो ही एक्सेप्टेड, ठीक है। तो नेवल कोर्ट बैठा और जो उसमें जज था वो वही ऑफिसर था इसका, जो इसके विरुद्ध था वही ऑफिसर मेन जज था। तो आप सोचो, बेचारा इतना सही, कई साल उसने मेहनत करके, बड़े प्रयास से, महीनों मेहनत करके वापस आया। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द नेवी, but then he is seeing that the person who is sitting on the judge's seat is the person who opposes him. वही जज बन के बैठा है जो नहीं चाहता कि आए। खैर, इन्होंने कहा कि मैं बनना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया कोर्ट का एक सीन है, जहाँ कार्ल ब्रुशेर से ये जो ऑफिसर है वो कहते हैं, बोले कार्ल तुम 40 साल के हो, तुम्हारी एज 40 साल हो गई है, 42 समथिंग, और तुम्हारा एक पाँव भी नहीं है। So do you think you can compete with those who are half your age? आप ऐसा सोचते हो कि जो लोग आपकी आधी उम्र के हैं उनके साथ आप प्रतियोगिता कर सकते हो? ये स्वाभाविक है ना, जो 20-25 के वो ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, एक्टिव होंगे, और ये 42-43 कहाँ, और पाँव भी नहीं है। So he asked, क्या do you think? And he gave a very good answer. He said, sir, the question is whether they can compete with me. प्रश्न ये है, वो लोग मेरे साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं क्या? दैट मीन सो मच कॉन्फिडेंस ही है कि आई कैन डू इट बेटर, इतना उनके अंदर विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। उन्होंने कहा वो लोग कर सकते हैं कि मेरे साथ प्रतियोगिता? सो देन दिस ऑफिसर कुड नॉट से एनीथिंग। ओके, तो ऐसे चलता रहा। तो ये ऑफिसर चाहता नहीं था कि आए, तो उन्होंने फिर कहा कि देखो, हमारी मैनुअल में, जो रूल्स की मैनुअल है, उसमें एक रूल है कि अगर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो मरीन डाइविंग कर सकता है, वापस वही पोजीशन आप लेना चाहते हो, तो एक सूट होता है, डाइविंग सूट, 290 टन्स, बहुत हैवी सूट था वो। पानी में पता नहीं चलता है, लेकिन आप बाहर ऐसे पहनोगे तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हमारा रूल ये है कि ये जो सूट है इसको आपको पहनना है। सूट मंगाया गया और वो इतना हैवी था कि वो व्हीकल पर, एक ट्रॉली पर रखकर लाया गया, दो लोग धक्का मारकर लेकर आ रहे, इतना हैवी दैट डाइविंग सूट, 290 टन। सो ये आपको पहनना है, और ये पहनकर यू हैव टू वॉक 12 स्टेप्स, दिस इज अवर रूल। अगर कोई 12 कदम चल लेता है ये पहनकर, वो प्रूव कर देता है कि वो फिट है मरीन डाइवर बनने के लिए। सो जो उसका मेंटर था, जो उसका गुरु जिसको उसने चुना था, वो भी नेवी के ऑफिसर थे, तो वो भी वहां पर आए। तो अब हुआ कि इनको पहनना है, तो ठीक है, दो लोगों से कहा गया इनको सूट पहनाओ, तो दो लोगों ने सूट पहनाया। बहुत हैवी सूट था और ऊपर इतना बड़ा वो ऊपर हेलमेट जैसा रखा गया, बहुत हैवी। तो सब होने के बाद अब था कि इनको 12 स्टेप चलने हैं। तो बैठे हुए थे, तो दो लोग आए उठाने के लिए, तो मतलब जो उनके गुरु थे, ऑफिसर थे, उसने कहा चलो स्टार्ट वॉकिंग, यू हैव टू वॉक 12 स्टेप्स। तो दो लोग आए उनको उठाने के लिए, क्योंकि इतना हैवी है वो उठ नहीं सकते। तो दो लोग उनको उठाने जैसे ही आए, वो जो जज बैठा था ना, उसने मना कर दिया। ही सेड नो, ही हैज टू रेज ऑन हिज ओन, उसको खुद खड़ा होना है। तो ये जो इनके काल ब्रशेर के गुरु थे या ऑफिसर थे, जो टीचर थे, वो सिखा रहे थे, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो उसने जज से पूछा, उन्होंने कहा सर द मैनुअल डजंट से सो, मैनुअल डजंट से दैट ही हैज टू यू नो गेट ऑन हिज ओन, ही कैन बी हेल्प। उन्होंने कहा सर मैनुअल में ऐसा नहीं लिखा है कि उसको कोई मदद नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि नया मैनुअल में लिखा है, देयर इज अ न्यू मैनुअल व्हिच सेज दैट द पर्सन हैज टू गेट अप ऑन हिज ओन। एक नया रूल बने हैं, नए सेट ऑफ रूल्स हैं, उसमें लिखा है कि व्यक्ति को खुद खड़े होना है इतना भारी सूट पहन के। तो इसको और गुस्सा आया टीचर को, तो इसने पूछा, वो उसका ऑफिसर था इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, तो उसने पूछा सर मे आई आस्क यू हाउ डू यू नो, कि मैं पूछ सकता हूं आपको कैसे मालूम कि नई मैनुअल आई है, नया रूल है। एंड देन दिस ऑफिसर सेज आई नो बिकॉज आई रोट इट, मुझे मालूम है क्योंकि मैंने लिखा है बस। मतलब वो उसको चाहता नहीं था कि वो आए, सो खैर उसको करना पड़ा। तो ये जो उसका टीचर था, उसने थोड़ा उसको प्रेरणा दिया, उसको बहुत जोर से बोला गेट अप, उठो उठो। उसको बहुत भारी था, बड़ी मेहनत करके वो खड़ा हुआ, उसकी सारी शक्ति उसमें चली गई। अब उसको 12 स्टेप चलने थे वो पहनकर, तो 8 स्टेप वो चला, उसके बाद उसकी सांस फूलने लगी, तकलीफ होने लगी। और उस समय ये जो उनके टीचर था, इसने इतना बुरा भला कहना शुरू किया उसको, गालियां लिटरली अब्यूज करना शुरू किया सामने सबके। और फिर धीरे धीरे करके उसने बाकी के भी 4 स्टेप लिए और 12 स्टेप हो गए। तो फिर वही जो ऑफिसर था जो मना कर रहा था, वो कुछ नहीं कर सका, उसको अनाउंस करना पड़ा कि वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इज प्राउड टू रीइंस्टेट काल ब्रशेर। जो काल ब्रशेर हैं उनको हम फिर से यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में वापस ले रहे हैं। तो उसको बोलना पड़ा, दिस इज डिटर्मिनेशन, कि उनको कितना मेहनत, पहले तो पांव नहीं है, वो पांव लगाकर चलना ही मुश्किल होता है, लेकिन वो परफेक्ट चलना, डाइविंग करना, सब कुछ करना, और फिर इतना भारी सूट, केवल डिटर्मिनेशन। ही वॉज डिटरमाइंड आई हैव टू डू इट। तो जो एक विजेता है उनकी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए, साथ ही साथ कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट मतलब हम जिस चीज को कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित, कि ये हमें करना ही है, इसको इसके प्रति हमें जीवन देना है। साथ साथ हार्ड वर्क होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम लेजी बनकर आराम से कहीं सोकर विजेता बन सकते हैं, वो व्यक्ति कभी नहीं बनेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम्हें विजेता बनना है तो तुम्हें आलस को त्यागना होगा, गिव अप लथार्जी, गिव अप योर लेजीनेस अर्जुन, विगत ज्वरः। सो इसीलिए वी डोंट हैव टू बी लेजी, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। देर आर टू थिंग्स, हार्ड वर्क एंड हार्डली वर्किंग, दो चीजें हैं। हार्ड वर्क मतलब बहुत मेहनत करना, हार्डली वर्किंग मतलब बहुत कम मेहनत करना। तो हमें हार्डली वर्किंग नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, बहुत हार्ड वर्क होना चाहिए। हमें पीछे नहीं जाना चाहिए हार्ड वर्क से, कितनी मेहनत करने से, मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए। मेहनती व्यक्ति जीत सकता, लेकिन जो आलसी है वो कभी नहीं जीत सकता। सो डू हार्ड वर्क। वेदरिंग फेलियर्स, जब हमने बताया कि अगर आप फेलियर्स हो तो उसको कैसे आपको संभालना चाहिए और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए हमें, रिसोर्सफुल। तो ये सारे गुण हैं कि किस तरह से हम विजेता बन सकते हैं। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जैसे हमने उदाहरण दिया काल ब्रशेर का, बहुत उधम सिंह की तरह हमने उधम सिंह का उदाहरण दिया कि कैसे हमें पेशेंस होना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। 20 साल केवल एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो क्या सक्सेस आ सकती है? कैन वी बिकम सक्सेसफुल जस्ट बाय हैविंग डिटर्मिनेशन, जस्ट बाय हार्ड वर्क, कमिटमेंट? देयर आर सो मेनी पीपल हु डू हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। आप देखिए, जब सड़क बनती है, आप में से कितने लोग देखते हैं ना सड़क बनती है कभी, तो वो जो व्यक्ति होता है जो काट रहा है, तोड़ रहा है उसको, इतनी बड़ी मशीन लेकर चलाता है, आप उसको देखिए, धूप में बदन काला पूरा हो गया है, पसीना पसीना हो रहा है, और इतनी भारी मशीन है, घड़ 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 चला रहा है, क्या वो हार्डवर्क नहीं करता? लेकिन उसको मिलता क्या है अंत में? दिन के अंत में वही 200-300 रुपया मिलता है, जो थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा शराब पीता है, खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर वही काम। क्या विनर है वो? क्या सक्सेस है उसको? क्या वो हार्डवर्क नहीं करता? तो अगर केवल हार्डवर्क से सब कुछ होगा तो फिर जितने भी लोग सड़क पर काम कर रहे हैं सारे लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। Doesn't happen. Student life also we see. There are so many people who study and study and study, but they don't get marks. But there are some who don't study, who come to ISKCON temple also and go everywhere, but then they get good marks. They don't study too much. What is it then? If it is just hard work, अगर केवल hard work से है, तो हम देखते हैं कई विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते, बहुत hard work करते हैं रात दिन। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतना मेहनत नहीं करते फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है। तो ऐसा क्या चीज है? वी आर ट्राइंग टू लर्न द सीक्रेट, सम ऑफ द सीक्रेट्स वी हैव लर्न, बट व्हाट इज द मेन सीक्रेट? क्या ऐसा है? व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट इट? एवरीथिंग इज देयर, डिजायर इज देयर, डिटर्मिनेशन इज देयर, इच्छा है। क्योंकि जब भी आप लोग कॉलेज आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सोच के आते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं पास नहीं होना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग सोच के आते हैं, प्रण लेके आते हैं, ऐसा निर्णय, मर जाऊंगा इसी कॉलेज में लेकिन पास नहीं होगा यहां से, यस, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई सोच के आता है कॉलेज? नहीं, आप सोच के आते बस कुछ भी हो क्लियर करना है, 4 साल में 5 साल व्हाटएवर टाइम जो भी आपका होता है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है। वैसे कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है सफल होना, है ना? मंदिर भी आप क्यों आते हो? भगवान के पास जाके कोई मांगता है क्या कि भगवान पिछले साल मुझे 90% आए थे, इस साल 30 चाहिए, ज्यादा नहीं? आप कोई कहते हैं? एनीवन कम्स एंड टेल्स ये बात हो गया, भगवान कहाँ है इतने सारे, बस थोड़े बहुत ठीक है। तो ऐसा क्या है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग हार्डवर्क करते हैं, हमारा इच्छा भी है लेकिन फिर भी हो नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होता है? तो कुछ तो ऐसी चीज होगी, कोई तो ऐसा बात होगी जो हमें महत्वपूर्ण है, हमें खींचती है, और वो है भगवान की अनुमति। वी ऑल्सो नीड सैंक्शन ऑफ गॉड, क्योंकि जब तक भगवान की अनुमति नहीं है आप कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं सबके हृदय में बैठा हूं और मैं ही सबको ज्ञान दे रहा हूं, स्मृति दे रहा हूं, विस्मृति दे रहा हूं। और भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान जो हृदय में बैठे हैं, उपदृष्टा अनुमंताचा भरता भोक्ता महेश्वरा, तो ये अनुमति देते हैं तब सब कुछ होता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केवल हमारे हार्डवर्क से सब कुछ हो जाएगा, केवल हमारी मेहनत से सब कुछ होगा। अगर ऐसा होता तो कितने सारे लोग सफल हो चुके होते। इफ दिस वॉज द केस देन सो मेनी पीपल आर हार्ड वर्किंग, वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल? बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, गॉड, कृष्णा। His sanction is required. He has to approve that yes. Like for example, one person, एक आदमी को इच्छा है कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, okay? तो वो इच्छा कर मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ, मेहनत करते हैं। तो भगवान देखते हैं कि अरे इसको, इसके जीवन में इसके कर्म के अनुसार इसको साइकिल मिलना ही बहुत है, राइट? तो वो मर्सिडीज सोचता रहता है, लेकिन केवल वो फिर क्या करता है, साइकिल लेता है, जहां पे वो हीरो लिखा होता है ना साइकिल पे, एटलस, वहां वो कट करके मर्सिडीज लिख देता है, बस उसकी मर्सिडीज वही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उतना ही दिया। ऐसा होता, और वैसे भी हम लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं ना। कुछ लोग मांगते हैं अपने लिए, कुछ लोग मांगते हैं दूसरों के लिए, और कुछ लोग मांगते हैं दूसरों का बुरा करने के लिए, राइट? आप में से किसी ने कभी ऐसे मांगा है भगवान से कि उस मैं पास हूं या ना हूं, वो व्यक्ति पास नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई मांगते हैं? दिस इज एनवियसनेस। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार शिव जी के दो भक्त थे, तपस्या कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के आसपास घर में रहते थे। तो दोनों तपस्या कर रहे थे और शिव जी आए, पहले के पास आए। शिव जी ने पूछा, क्या चाहिए बताओ तुम्हें, मैं प्रसन्न हुआ तुमसे। तब ये व्यक्ति सोच रहा था कि अगर मैं कुछ मांगूं और फिर उसके पास जाएंगे और वो ज्यादा मांग लेगा तो मैं जीवन भर ऐसे ही रोता रहूंगा। तो उसने कहा कि शिव जी आप उधर गए क्या? शिव ने कहा नहीं, अभी जाने वाला हूं, नेक्स्ट आई एम गोइंग देयर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप जो भी उसको देंगे ना उसका डबल मुझे दे दीजिएगा, बहुत सिंपल, राइट? उसने सोचा कि वो क्या मांगेगा, वो एक घर मांगेगा, बंगला, तो मुझे अपने आप दो मिल जाएंगे। हो सकता है वो 1 करोड़ रुपया मांगे, मुझे तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं, जो भी वो मांगे उसका डबल मुझे दे दीजिएगा। शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी दूसरे के पास गए, वो दूसरा भी ऐसे ही था। उसने पूछा, आप पहले यहां आए कि पहले वहां गए थे? शिव जी ने कहा मैं पहले वहां गया था। अच्छा, उसने क्या मांगा आपसे? शिव जी ने कहा उसने मांगा कि जो भी तुम्हें दूं उससे डबल उसको मिल जाए। अब इसको तो बड़ी चिंता, सोचने लगा, अरे अगर मैं 1 बंगला मांगू उसको 2 बंगले मिलेंगे, मैं 1 करोड़ मांगू उसको 2 करोड़ मिलेंगे, मैं 1 बीवी मांगू उसको 2 बीवी, नहीं वैसे नहीं सोचा होगा सर। सो वो तो अच्छा था अगर ऐसे मांग लेता तो अब वो सोचने लगा, बहुत विचार कर रहा है कि नहीं क्या करना है, क्या करना है। और मतलब उसकी इच्छा थी कि मुझे मिले नहीं मिले, लेकिन इसको मुझसे ज्यादा मिलेगा तो मैं जीवन भर देखता रहूंगा, हाय मेरा 1 ही बंगला है, 2 बंगला है। तो बहुत सोचने के बाद उसने कहा, शिव जी मेरी 1 आंख फोड़ दो, मेरा 1 हाथ काट दो और मेरा 1 पांव तोड़ दो, तो क्या होगा उसका? क्या उसका क्या होगा? दोनों आंख जाएंगी, दोनों हाथ जाएंगे, दोनों पांव। और इतना द्वेषी था कि ऐसी अवस्था में 1 आंख नहीं, शिव जी ने फोड़ दी, ठीक है तुम्हारी जो इच्छा, तो ऐसी अवस्था में 1 आंख नहीं, 1 हाथ नहीं, लंगड़ाता हुआ जाके उसके घर में देख रहा है उसकी दोनों आंखें फूटी कि नहीं फूटी, उसके दोनों हाथ गए कि नहीं, इतना द्वेष होता है। तो हमें भगवान से ये सब नहीं मांगना चाहिए ऐसा कुछ, बट हमें भगवान से जो हम कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से अनुमति मांगे, ताकि भगवान सैंक्शन करें। और भगवान सैंक्शन कब करते हैं? हमारे कर्म के अनुसार। हम सब ने कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उसी के अनुसार हमें अलग अलग जीवन मिले हैं। नहीं तो क्या कारण है, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई सुंदर पैदा हुआ, कोई कुरूप पैदा हुआ, कोई बुद्धिमान पैदा हुआ, कोई कम बुद्धि वाला पैदा हुआ, कोई अमीर पैदा हुआ, कोई गरीब, ये सब क्या कारण है? क्या भगवान ऐसे ही आंख बंद करते हैं, किसी को कहीं फेंकते हैं, किसी को कहीं फेंकते हैं? नहीं, हमारे कर्म हैं, इसीलिए हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि अब हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमें कोई गलत फल मिले। तो भगवान की अनुमति ये बहुत आवश्यक है। कहीं कई बार तो लोग भगवान को ही नहीं मानते, अनुमति की तो बात ही दूर की है ना। आप ऐसे कई लोगों से मिले, आप में से कितने लोग ऐसे किसी एक व्यक्ति से जीवन में मिले हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं? आप किसी से मिले हैं? आप में से कितने लोग मिले हैं कोई कभी भी? 1, 2, 3, 4, 5 बहुत लोग। लोग कहते हैं कि हाँ भगवान किधर है, भगवान है तो दिखाओ, है ना, सही है कि नहीं? और सही भी है तो दिखाओ, मैं तो नहीं मानता भगवान है। ऐसे ही दे से लाइक दैट, वी डोंट बिलीव इन गॉड, इफ गॉड इज देयर शो इट मी, दिखाइए आप। और इतना ही नहीं, हमारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कहाँ उनमें भगवान का विषय पढ़ाया जाता है? आप बताइए, आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको एक अलग से क्लास होती है ये समझाने के लिए कि भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए? नहीं, कोई नहीं सिखाता, बस मशीनें मशीनें बनाओ, ये बोल्ट लगाओ, वो नट बोल्ट लगाओ, ये करो, रोटी खाओ, बस कुछ और नहीं, राइट? लेकिन भगवान की भक्ति कोई नहीं सिखाता। तो स्कूल कॉलेज स्कूल से भी नहीं सिखाते हैं। इसको क्या हुआ? ओके, थैंक यू। स्कूल से भी नहीं सिखाते हैं। एक एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक टीचर, यहां कोई टीचर नहीं है ना, बोलना चाहिए कि नहीं? टीचर्स के विषय बोल सकते हैं। एक बार एक टीचर थी जो नास्तिक थी, और वो चाहती थी कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब नास्तिक बनने चाहिए, कोई ये जानना नहीं चाहिए, सब जानना चाहिए कि भगवान नहीं है। छोटे बच्चे थे तो उन्होंने बुलाया, एक बार एक छोटे बच्चे को बोला, देखो ये ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है? बोला हाँ दिखाई दे रही है। पंखा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। बाहर जाओ। बाहर जाके आए स्टूडेंट। सूरज दिखाई दिया? सूर्य। बोला हाँ दिखाई दिया। भगवान दिखे? बच्चे ने बोला नहीं, भगवान नहीं दिखे। तो टीचर ने कहा, देखो बहुत सरल बात है, तुम्हें ट्यूबलाइट दिख रही है क्योंकि ट्यूबलाइट है, पंखा दिख रहा है क्योंकि पंखा है, सूर्य दिखा क्योंकि सूर्य है, भगवान नहीं दिखे क्योंकि भगवान नहीं है, सिंपल। बच्चे ने कहा ये बात तो बराबर है, नहीं तो दिखते ना। तो जब ऐसा हो गया तो वहां पर और एक छोटी सी बच्ची थी, उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको सिखाया गया था कि भगवान होते हैं। तो उसने जाके टीचर से कहा, टीचर मैं भी यही प्रश्न बच्चे से फिर से पूछना चाहती हूँ कुछ प्रश्न। तो टीचर को बहुत अच्छा लगा कि हाँ और एक बार पक्का हो जाएगा कि ये जान जा। तो बुलाया, तो उसने लड़के को बोला, फिर से वही छोटा लड़का था, ट्यूबलाइट दिख रहा है, लड़के को गुस्सा आ रहा था, अरे यहाँ दिख रहा है, वो वापस क्यों पूछ रहे? बोले पंखा दिख रहा है। बोले हाँ दिख रहा है, ठीक है बाहर जाओ। बाहर जाकर सूरज दिखा? हाँ दिखा। उसने कहा अभी दो प्रश्न आखिरी के। बोले क्या? टीचर का चेहरा दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। बोले टीचर का दिमाग दिखाई दे रहा है? उसने कहा नहीं दिखाई दे रहा। उसने कहा देखो मैं समझाती हूँ, छोटे बच्चे ने कहा, ट्यूबलाइट है इसलिए दिख रही, ट्यूबलाइट है इसलिए दिख रही है, और पंखा दिख रहा है क्योंकि पंखा है, सूर्य दिखा क्योंकि सूर्य है, टीचर का चेहरा दिखा क्योंकि टीचर का चेहरा, टीचर का दिमाग नहीं दिखा क्योंकि, बड़ा सरल है, राइट? तो इसलिए ऐसा नहीं है जो दिखता है वही है, राइट? ऐसे हम नहीं कह सकते भगवान है तो हमें दिखाइए, नहीं तो हम भगवान नहीं मानेंगे। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम इस सरल चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में भगवान की अनुमति से होता है। एवरीथिंग इन अवर लाइफ इज ड्यू टू सैंक्शन ऑफ गॉड। वी डू नॉट हैव एनी पावर्स। क्या शक्ति है हमारे पास? हम अपना केवल कर्तव्य कर सकते हैं, वी कैन ओनली डू अवर ड्यूटी, बट रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा, एंड दैट इज व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड इन द एंड ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के अंत में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवम नीति मतिर ममा। वो कहते हैं कि जहां भी कृष्ण है, वेर एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स योगेश्वर, एंड वेर एवर देर इज अर्जुना जहां अर्जुन है, देर विल ऑल्सो सर्टेनली बी ऑपुलेंस, वहां पर ऐश्वर्य होगा, विक्ट्री, वहां पर विजय होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर शक्ति होगी एंड मोरालिटी और नीति होगी. दैट इज माय ओपिनियन. तो ये भगवत गीता के अंत में कहा गया, सारा भगवत गीता सुनने के बाद, कि ये है जहां भी कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा. और यही चीज पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन विजेता बने. एक बहुत सुंदर कहानी है महाभारत में, अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों गए थे श्री कृष्ण के पास युद्ध के पहले मदद मांगने. तो पहले दुर्योधन पहुंचे और क्योंकि दुर्योधन अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं इसीलिए वो कृष्ण सो रहे थे उस समय, तो वो कृष्ण के सर पर बैठ गए, सर के पास. और बाद में अर्जुन आए, वो बहुत नम्र हैं, तो वो पैरों के पास बैठ गए कृष्ण के. तो कृष्ण सो रहे थे, आंखें खुली, तो आंखें खुलने के बाद आदमी सबसे पहले क्या देखता है, सिर तो नहीं देखेगा ना ऐसे घूम के. उन्होंने नीचे अर्जुन को देखा तो उन्होंने कहा अर्जुन से मांगो क्या मांगना है. तो दुर्योधन ने कहा नहीं मैं पहले आया था, मुझे बताना चाहिए पहले. तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन छोटा है पहले मांगने दो. तो अर्जुन से कहा मांगो क्या मांगना है. तो अर्जुन ने क्या मांगा, अर्जुन से उन्होंने कहा दो चीजें हैं युद्ध में, एक मैं कृष्ण जो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, बस केवल मैं रहूंगा, और दूसरी ओर मेरी सारी सेना नारायणी सेना जिसको कोई हरा नहीं सकता वो सेना है. तो बाप बताओ क्या चाहिए. अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए. तो जब दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन तो मन में हंसने लग गया, क्या बेवकूफ आदमी है ये अर्जुन, इतना अच्छा चांस मिला था और क्या लिया, कृष्ण जो युद्ध नहीं करने वाले. तो फिर दुर्योधन ने कहा ऐसे बाहरी तौर से, ठीक है अगर अर्जुन तुम ये चाहते हो तो मैं सेना ले लेता. और दुर्योधन बहुत खुश था. लेकिन देखिए दुर्योधन ने चुना सेना को और अर्जुन ने चुना कृष्ण को. विजय किसकी हुई, अर्जुन की. क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है जीवन में. देखिए जो भी हमारे जीवन में होता है, अगर हम जीतते हैं हारते हैं, इसका पूर्व संबंध है. जो कर्म हम करते हैं उसका फल मिलता है, हमारे कर्मों को हम बदल नहीं सकते. जिसको भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, उसको बदला नहीं जाता. एक ही चीज बदल सकती है उसको. आपके भाग्य में जो लिखा है, जैसे लोग कहते हैं ना जो भाग्य में लिख दिया वही होना है, कोई बदल नहीं सकता, ये सच है. अगर आपके जीवन में लिखा है आपको फेल होना, आपको निश्चित फेल होगे. आपके जीवन में लिखा है आपको पास होना, आप पास होगे. अगर आपके जीवन में लिखा है आपको सक्सेसफुल होना, आप सक्सेसफुल होगे. तो क्या इसका अर्थ है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं. एक चीज है जो हमारे भाग्य बदल सकती है, एक चीज है जो हमारे कर्म बदल सकती है, एक चीज है जो डेस्टिनी चेंज करती है, और वो है अकर्म, आध्यात्मिक कार्य, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. इसीलिए बाकी सारी चीजें आवश्यक है, डिटर्मिनेशन आवश्यक है, हार्डवर्क आवश्यक है, कमिटमेंट आवश्यक है, इंटेलिजेंस आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का सैंक्शन. और उसके लिए हमें परफॉर्म, वी हैव टू परफॉर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. अर्जुन ऐसी ही स्थिति में था, कुछ नहीं जानता था, युद्ध नहीं करना चाहता था, हार रहा था, भाग रहा था, कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा. लेकिन जब कृष्ण ने गाइडेंस दिया और उसके बाद अर्जुन ने युद्ध किया, और अर्जुन ने किनको मारा, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने सिखाया था कि कैसे धनुष पकड़ना, भीष्म जिनकी गोद में खेला था. इतने महान बड़े बड़े योद्धा, अर्जुन बहुत छोटा था उनके सामने, लेकिन जीत गया क्योंकि कृष्ण थे. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा. तो इसलिए हमें जीवन में यह सीखना चाहिए, वी शुड लर्न दैट हमें सब कुछ करना है. ऐसा नहीं है कि हमें सब छोड़ देना है. अर्जुन तो छोड़कर भाग रहा था. हमें कुछ छोड़ना नहीं है. हम जहां हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना है, बाद में आगे जो भी हमें घर के कार्य करने हैं सब करना है, लेकिन कृष्ण को जोड़ना है. एंड इफ वी कैन डू दैट वी विल बिकम द रियल विनर. वी कैन विन ओनली इफ देयर इज सैंक्शन, एंड द सैंक्शन कम्स इफ वी सर्व द लॉर्ड. हमारे लिए अनुमति तब आएगी जब हम भगवान से भगवान की सेवा में लगेंगे, आध्यात्मिक कार्य करेंगे। आध्यात्मिक कार्य अर्थात जैसे भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के नाम का जप करना बहुत महत्वपूर्ण, हमारे मन को वश में करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे कुछ आध्यात्मिक कार्यों में लगना, जैसे आप लोग आज मंदिर आए हैं, दिस इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जस्ट टू कम टू द टेम्पल, बस केवल मंदिर आना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, यह आध्यात्मिक कार्य है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि हम ये हर हफ्ते ये कार्यक्रम करते रहेंगे, आप आते रहिए, तो धीरे 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 यू विल लर्न कि कैसे हम भगवान की सेवा करते हुए, आध्यात्मिक कार्य करते हुए कैसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑन टुडेज प्रेजेंटेशन, प्लीज रेज योर हैंड एंड द माइक विल कम टू यू, यू विल बी एबल टू। कोई किसी के प्रश्न हो, स्टूडेंट्स में से कोई, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना हो,
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण। यस,
ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे आप फेस करना
है? देयर टू थिंग्स, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोग बहुत ज्यादा हो जाता है, अरे मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर चुटकी भी नहीं बजाना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स, ऑफ कोर्स वी शुड हैव कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होना चाहिए, हाँ मैं कैसे पास होऊंगा, मैं ऐसा नहीं, हाँ मैं कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस मीन्स यू आर नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। सो ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी काउंटरैक्टेड बाय परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी कर्तव्यों को निग्लेक्ट करने लगते हैं, जो कार्य करने हैं, जैसे आपको पढ़ाई करनी है आप निग्लेक्ट कर देते हैं, है नहीं मैं सब जानता हूं, कोई जरूरत नहीं है, तो निग्लेक्ट करने से ड्यूटीज ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और फिर वो दैट लीड्स टू फेलियर्स। सो निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू फेलियर। तो व्हाट इज द रेमेडी, गो बैक। Failures means you had overconfidence. Overconfidence can be counteracted by not neglecting your duties. So do your duties very nicely. You may have confidence that you will win, but then don't neglect your duties. The moment you neglect your duties, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आप सोचते हो कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं एक घंटा बस पढ़ लूंगा, ज्यादा नहीं। नहीं, अगर आपको दो घंटा पढ़ना है, तीन घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए, भले आप जानते हो कि आप अच्छी तरह एग्जाम में कर सकते हो, फिर भी पढ़िए। कॉलेज अटेंड करना करना ही चाहिए, ये नहीं सोचना है कि ये सब तो मैंने पढ़ लिया है, अलग से मैं ट्यूशन भी ले रहा हूँ, ये सब मेरे लिए आवश्यक नहीं, मैं ये सब जानता हूँ, नहीं अटेंड करना है तो कर। सो नंबर वन, यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को बड़ी अच्छी तरह से करना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ता। तो इसलिए अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से हम करें ताकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ना आए। दूसरी चीज, सही मार्ग निर्देशन में रहें, बी इन प्रॉपर गाइडेंस। सी, इन अवर लाइफ वी नीड गाइडेंस एट एवरी स्टेप, हमें अपने जीवन में मार्ग निर्देशन हर समय चाहिए। अभी ऐसा हो गया कि हम सोचते मैं सब कुछ जानता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं, मार्ग निर्देशन, मुझे पूछना है, मुझे गाइडेंस में रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे कार्य करना है, ये सब हमें सीखना है, तो एक गाइडेंस में रहना है। तो नंबर वन, डोंट नेग्लेक्ट योर ड्यूटीज। नंबर टू, ऑलवेज बी अंडर गाइडेंस, हमेशा किसी न किसी के मार्ग निर्देशन में रहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है और क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सब हमें जानना चाहिए। तो बी अंडर गाइडेंस, And third thing is very important, keep praying to the Lord. भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे कभी भी ऐसी स्थिति में मत डालिए जहां मुझे अपने ऊपर अहंकार हो जाए, where I am over confident thinking that I can do everything. So just do these three things. Number one, don't neglect your duties. Number two, be under guidance. Number three, pray to God. तीन चीजें कीजिए, कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा. पहली चीज, अपने कर्तव्यों को करते रहिए. दूसरी चीज, हमेशा किसी न किसी के मार्ग निर्देशन में रहिए. और तीसरी चीज कि कभी भी क्या था तीसरा चीज, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, भगवान से प्रार्थना करते रहिए. ठीक है, और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? यस, उधर माइक दीजिए. हाउ टू कम आउट ऑफ फियर? वेरी नाइस क्वेश्चन. भय से कैसे मुक्त होना चाहिए? अगर आपके पास समय है तो हम आपको एक थोड़ा सा विस्तार में उत्तर दें. समय है आपके पास? जस्ट एक दो तीन घंटा और. वी हैव अ प्रेजेंटेशन ओवरकमिंग फियर. आई हैव इट राइट नाउ हियर, बट इट टेक्स सम टाइम. क्योंकि अलग अलग प्रकार के फियर होते हैं लोगों को. किसी को धन चले जाने का फियर होता है, किसी को मान चले जाने का फियर होता है, किसी को ब्यूटी चले जाने का फियर होता है. राइट, पीपल डोंट वांट टू बिकम ओल्ड. इसीलिए देखिए इतनी सारी क्रीम्स अवेलेबल है ना, बिकम यंग अगेन इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते में फिर से जवान हो जाइए. ये सब क्या है, धोखा है, लेकिन फिर भी लोग खाते रहते क्योंकि बूढ़े नहीं होना चाहते. तो हर एक को डर है. उस डर से आगे हम उत्तर तो अभी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप ये प्रेजेंटेशन पूरी देखें. बहुत सुंदर तरीके से उसमें समझ सकते हैं कि हम फियर से कैसे बच सकते हैं. और क्योंकि हम इन क्लासेस में से एक में वो देने वाले हैं ओवरकमिंग फियर, तो इसीलिए आप थोड़ा सा अगर रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. नहीं तो अगर अभी आप सुनना चाहें तो हम 1-1.5 घंटा भी उस पर बोल सकते हैं. I'll just tell you some presentation. Anyway, any other question? Very soon we will take it up. Overcoming fear. Aur koi hai? Aage dijiye mic idhar, yahan.
Sir.
Yes.
While doing work, how we can know that our time is wasting? At some point, our time get wasted, no?
Very good question. How do we know that we are wasting our time, and when we are doing the work or we are utilizing our time, right? So, what's it? Those who have come from the hostel and जो hostel से आए हैं, अगर उनको देर हो रही है तो वे लोग बाहर प्रसाद ले सकते हैं. जिनको अगर बहुत अर्जेंट है, पहुंचना ही है टाइम पे. वैसे हम लोग फिनिश ही करने वाले हैं. एक ये प्रश्न होगा, इसके बाद थोड़ा देर, 5-10 मिनट थोड़ा अच्छा आप लोग को थोड़ा नाचना चाहिए. बहुत दिनों से नाचे नहीं होंगे आप लोग, भगवान के सामने नृत्य कर लेना चाहिए. और फिर उसके बाद कीर्तन करना चाहते हैं ना आप लोग? कितने लोग कीर्तन करना चाहते हैं भगवान के सामने? हाथ ऊपर कीजिए बहुत अच्छी तरह से जोश में. ओके, सो जस्ट थोड़ा समय और. एनीवे, हम ऑन करना चाह रहे थे आपको ओवरकमिंग फियर दिखाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा रह गया. सो सॉरी, आपका प्रश्न था कि कैसे हम
टाइम वेस्ट
ना करें. तो जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, पहली चीज हमें देखनी चाहिए कि ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं ये हमें बहुत थोड़े समय के लिए लाभ देने वाली है या लंबे समय के लिए. कोई भी चीज जो है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए आपको सोचना है कि क्या ये मुझे शॉर्ट टर्म का बेनिफिट देगी या लॉन्ग टर्म का. तो अगर शॉर्ट टर्म का है देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट अगर लॉन्ग टर्म है देन यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम. पहली चीज. दूसरा चीज, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज इट रियली गोइंग टू गिव मी बेनिफिट और जस्ट इट इज गोइंग टू बी अ यू नो आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशन शोइंग दैट इट इज बेनिफिट. ऐसा हो सकता है कि केवल बाहरी दृष्टि से लगे कि ये मुझे लाभ दे रहा है लेकिन लाभ नहीं दे रहा है. तो कैसे पता चलेगा कि ये सही में लाभ दे रहा है कि नहीं? इसका ये जानने के लिए ये है कि ये आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है. जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धन कमा रहा है और धन कमाते 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 धनी कमाने में लगा हुआ है लेकिन उसके जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है, वो उस धन को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो क्या वो समय का सही उपयोग कर रहा है या समय बर्बाद कर रहा है? क्योंकि कभी भी मर जाएगा अचानक, तो क्या फायदा हुआ? जीवन भर धन कमाता रहा कमाता रहा कमाता रहा और एक दिन मर गया, तो जितना उसने कमाया उससे बर्बाद. उससे अच्छा था कि वो थोड़ा कमाता लेकिन संतुष्टि होती, उस धन को एंजॉय करता. तो इसीलिए ये जानना कि क्या ये रियल में हमारे लिए बेनिफिशियल है या केवल हम उसके पीछे पड़े हुए हैं. तो अगर कोई कार्य हमें संतुष्टि दे, जीवन में प्रगति दे और सही दृष्टि से आनंद प्रदान करे, तब ये कार्य हमारा समय बर्बाद नहीं है, अन्यथा बाकी सारी चीजें समय की बर्बादी है. जैसे आप पढ़ाई करते हो, इस समय की बर्बादी नहीं है क्योंकि इसके साथ आगे आपका भविष्य जुड़ा हुआ, तो इसलिए वो समय की बर्बादी नहीं है. लेकिन अगर हम कोई और कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग शराब सिगरेट पीने में समय बर्बाद करते हैं. वो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा, सिगरेट का ऐड आता है ना, वो धुआं छोड़ते हुए बोलता है इट इज वेरी कूल, इतना धुआं निकल रहा है मुंह से लेकिन वो कूल बोलते, पता नहीं कैसे कूल होगा, और रेलवे इंजन की तरह धुआं निकलता रहता है धर धर और बोलते इट्स वेरी कूल. तो खैर जो ऐसे समय में कर लेते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि ये जो समय वो कर रहे हैं उसका क्या उपयोग है, उसको लाभ क्या है? कुछ नहीं. शराब पीने जाते हैं 3 घंटा बर्बाद, जो पैसा कमाया वो बर्बाद, और फिर अगले दिन सरदर्द हो जाता है, उसके लिए और कुछ करना सारा बर्बाद, और अंत में मिलता क्या है? केवल बीमारी, लीवर खराब हो जाता है. सिगरेट पीते हैं उसके एंड में क्या मिलता है? सिगरेट का क्या लाभ है? लोग सिगरेट पीते, बहुत आनंद आता है उन लोगों को पीने को, हमें पता नहीं कैसे लेकिन बहुत आनंद आता है. तो उससे क्या होता है, सिगरेट के कई लाभ भी हैं. आप जानते हैं सिगरेट पीने के क्या लाभ हैं? एक लाभ है कि आपके घर में कभी चोर नहीं आएगा अगर आप सिगरेट पीते हो तो. यस, कभी चोर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आप रात भर खांसते रहोगे, है ना, सिगरेट पी रहे हो ना, तो खराब होगा लंग्स, तो रात भर खांसते रहोगे खां खां खां, तो चोर आएगा सोचेगा अरे ये तो जगा हुआ है, इसके घर नहीं जाना है. तो एक बेनिफिट है सिगरेट पीने का. दूसरा बेनिफिट है सिगरेट पीने का कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे, बहुत बड़ा लाभ है सिगरेट पीने का. कभी बूढ़े नहीं होगे, क्यों? जवानी में मर जाओगे, राइट, तो बूढ़े कैसे होगे, जवानी में ही मर जाओगे. तो इसीलिए जो ऐसी चीजें हैं तो समय की बर्बादी है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है हमारा. ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? नहीं तो हम लोग कीर्तन शुरू करें, क्योंकि हमने सुना कि कई लोग, आप में से कितने लोग हॉस्टल में हैं जिनको टाइम पे अंदर जाना है? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए जो समय पे या लेट हो रहा है. कई लोगों को ऐसे, कोई स्टूडेंट हैं जिनको बहुत लेट हो रहा है, जो अभी आए हैं उनको भी अगर लेट हो रहा हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं. आपको लेट हो रहा है? यस, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी जैसे थोड़ा सा देर कीर्तन करेंगे, कीर्तन के बाद आप कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम यहीं पे होंगे. लेकिन बाकी लोग सब अपना डिनर ले सकते हैं और जो जाना चाहें वो जा सकेंगे. लेकिन आप सबसे विनती है कि 5-10 मिनट कीर्तन में आप सब लोग भाग ले लीजिए. ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हम लोग अगला कार्यक्रम 25 मार्च को कर रहे हैं, 25th मार्च, और उसके बाद हर सैटरडे होगा ये कार्यक्रम. केवल अगले सैटरडे नहीं होगा 21st को, लेकिन ये 25th मार्च को हम लोग करेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है कि काम ही पूजा है. ऐसा लोग कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप. तो लोग बहुत कहते हैं ना काम ही पूजा है, तो वो सही है या नहीं इसकी चर्चा हम लोग 25 तारीख को करेंगे। और थर्ड हम लोग उसके बाद लेंगे ओवरकमिंग फियर। किसने पूछा था, किसका प्रश्न था, प्लीज हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, सो ओवरकमिंग फियर दिस विल बी थर्ड टॉपिक। ओके, और इसके अलावा अगर आप में से कोई कोई एक विषय पर सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि ये विषय पर सुनना है, जैसे हैबिट्स पर सुनना है, कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी पर सुनना है, भगवान पर सुनना है, भगवान है या नहीं उस पर सुनना, वट एवर, तो आप बाहर जाते समय वो जो रजिस्टर जहां आपने नाम दिए थे तो वहां पर एक जो बैठे होंगे उनको दे दीजिएगा कि हम ये टॉपिक सुनना चाहते हैं, हमारे लिए ये टॉपिक अच्छा हो। जैसे ओवरकमिंग फियर एक टॉपिक है, वो हम लोग तीसरा लेंगे नेक्स्ट में। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है या नहीं, इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद हम लोग कैसे भय से दूर जाना है, शास्त्रों में अलग अलग तरह के भय बताए गए हैं, तो उन सब पर चर्चा होगी कि कौन से भय होते हैं, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ फियर। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ यू केम। कोई जल्दी आए, कोई देर से आए, कोई तकलीफ नहीं है, कम से कम आप आए भगवान के मंदिर में, ये महत्वपूर्ण बात है। और आपसे विनती है कि अगले प्रोग्राम में अर्थात 25 मार्च को जब ये प्रोग्राम होगा तो कृपया समय पर आइए ताकि ज़्यादा चीज़ें आप सुन सकें और हम लोग बहुत लेट नहीं करें कार्यक्रम। हमारी इच्छा तो जल्दी शुरू करने की है लेकिन आप सब आते नहीं तो इसलिए देर हो जाती है, तो आप लोग कृपया जल्दी आइए। और जो लोग अभी लेट आए हैं और बाहर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अर्थात अपना नाम और नंबर नहीं दिया, उनसे विनती है वो थोड़ा दे दें, क्योंकि इसके कारण हम आपको आपके जब नंबर होगा तो सूचना दे सकेंगे, आगे कोई कार्यक्रम बीच में दूसरा भी कोई होगा अच्छे ऐसे कार्यक्रम तो आपको दे सकेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। आप सबसे विनती है कि आप सब इस कीर्तन में बड़े उत्साह से और जोश से भाग लीजिए। आप सबका फिर से धन्यवाद देना चाहते, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं यहाँ पर, इतने सारे डिवोटीज, हाँ इसको बंद कर दो, इतने सारे लोग आप भगवान के समक्ष आए हैं यहाँ भगवान के मंदिर, तो कृपया अगले प्रोग्राम में भी इसी तरह आइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ कीर्तन करने का पद्धति ऐसे, अभी हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और जो गा रहे हैं पहले वो गाएंगे, आप लोग उसी तरह उनके पीछे पीछे गाएं, फिर धीरे धीरे जैसे ताल बढ़ेगी तो फिर थोड़ा कीर्तन भी होगा, तो दो तीन लोग जो यहाँ के भक्त हैं वो आपको बताते रहेंगे कैसे हम सब मिलकर नृत्य करें, भगवान के समक्ष नाचें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के सामने कीर्तन करना, भगवान के सामने नाचने से बहुत लाभ मिलता है, हमारे जितने भी पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं आप सब इस क्रिया को करें भगवान के कीर्तन को। तो कृपया आप सब खड़े हो जाइए, हम लोग कीर्तन करेंगे, लाइट्स ऑन कर दीजिए सारी। हरे कृष्ण
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने Thank you. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दुष्टतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद जय श्री